शांते शांते। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै सङ्गः देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम् ममोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति समारंभं शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरा। वन्दे गुरु परंपरा। ॐ शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। अथ गीता सूत्रम्। अथ समीक्षणाद् विषाद दर्शनात् मुक्तिजिज्ञासा आत्मज्ञानात् सा तदधिकारार्थं कर्मयोगः सफलासक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च स्वधर्मानुष्ठानम् ततः गुरुसेवा श्रद्धा इंद्रियजय तत्परता भी ज्ञान प्राप्ति संन्यास ज्ञान निष्ठार्थम् ध्यान योगेन सा ध्यान योगेन सा ध्यान योगेन सा ध्यान योग में कैसे डूबा जाए उसकी प्रक्रिया उसका रहस्य भगवान श्री कृष्ण इस षष्ठ अध्याय में बतलाते हैं। तो एक तो मन को एकाग्र करना है और हमारे जो रागात्मक वृत्ति हैं, अनुराग हैं, भाव हैं, उसको उनके साथ जुड़ना है। और तीसरा शब्द दिया मत परह, मुझे ही जो पर समझता है, श्रेष्ठ समझता है, ऐसा बन करके युक्त बनो। मत परह, भगवान को ही सबसे बड़ा समझना। मत परह, वैसे आपको लगता होगा कि हम लोग तो समझते ही हैं, समझते तो हैं लेकिन समझते नहीं भी हैं, समझने पर भी मानते नहीं हैं, तो इसलिए वो नासमझी हैं। एक संत थे, उन्होंने सुना कि हमारे जो राजा हैं बड़े ही दाता हैं, उनको कुछ आश्रम मठ बनाना होगा। तो सब लोगों ने कहा महाराज आप उनके पास जाइए, वो जरूर आपके इस मंगल प्रयास को वो समर्थन करेंगे। आ गए और उस समय राजा मंदिर में आए हुए थे, भगवान के सामने बैठे थे और भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान मुझे राजा बनाए रखना और मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनाना, माने सबका राजा। ऐसे ऐसे बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की। समय कामो काम कामाय मह्यम, है ना, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु, महाराज मैं तो भिखारी बनकर के आया हूं हाथ फैलाए हुए। काम कामाय, ना है ना, हम लोग सब हाथ फैलाए रहते हैं और आप तो महाराज कामेश्वर हैं, सबकी चाहत पूरे कर सकते हो, इसलिए आप जो है मुझे समस्त जो भी मेरी आशाएं हैं उसको पूरी करें। डेली प्रयार करते हैं, बोल तो देते हैं समय कामो कामो कामाय मह्यम कामेश्वरो, लेकिन उसको ख्याल थोड़े ही रखते कि क्या बोलते हैं। तो यंत्रवत बोल देते हैं, मांगो भी तो थोड़ी ईमानदारी से मांगो ना, कोई बात नहीं। अब संत जी जो है उनकी प्रार्थना सुनी, भगवान को हाथ जोड़ गया और चलते बने। राजा ने बुलाया कि अरे महाराज इधर आइए, आप चले क्यों जा रहे हैं, आप तो किसी चीज के लिए आए थे मेरे पास में। कहा कि हाँ मैं आया तो था लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं जा रहा हूं। क्यों? बहुत बार सुना आप लोगों ने, हमने भी, लेकिन उसको मानते कहां है, वही बात यही है। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम आए तो थे, एक आश्रम बनाना है और ये सब उस धन चाहिए। तो बोले लीजिए। बोले नहीं अब हम आपसे लेंगे नहीं। क्यों? बोले हमने तो सोचा कि किसी दाता के पास हम जा रहे हैं और उनसे लेंगे। हमको क्या पता था कि किसी भिखारी के पास आ गए। सब हैरान, अरे महाराज सत्संगी थे महाराज। कहा कि हम तो राजा हैं, आप भिखारी क्यों बोल रहे। बोला अभी क्या कर रहे थे सब, भगवान मुझे ये दो वो दो वो दो। तो जो आपको राजा बना सकता है, आपको ये सब दे सकता है, और जिनके इशारे से राजा एक क्षण में भिखारी बन जाता है, तो हम मांगेंगे तो उसी से मांगेंगे, उन्हीं को पकड़ेंगे। तो भगवान या ऐसी कोई सत्ता जो कल्पतरु हैं, सर्वसमर्थ हैं, सारा विश्व जो है उसके आश्रय से जी रहा है, ऐसा विश्वास है? ये समस्या है, विश्वास की समस्या। पहले तो प्रेम की समस्या बताया कल, ये विश्वास की समस्या है महाराज। तो आंख बंद करके कितना भी ध्यान करो, अविश्वास लेकर के, तो वो बनेगा कैसे, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? ध्यान करना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे भीतर की जो हमारा मन है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ऐसा एक बच्चा 12-13 साल का आया मेरे पास में, कहा कि स्वामी जी एक चीज मुझे पूछना है। कहा कि मैं तो भगवान को मानता हूं, मंदिर में जाता हूं, लेकिन कौन से भगवान सबसे बड़े हैं? हमारे मंदिर में तो सब होते हैं, वहां इंग्लैंड की बात थी, और शंकर जी भी हैं, कृष्ण भगवान भी हैं, राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, गणपति बाप्पा भी, मां भी हैं, दुर्गा मैया सब है एक मंदिर में, और होना भी चाहिए सनातनियों का। वैसे हम आपके घर में भी जाते तो वही देखते हैं, 33 करोड़ देवता सब है, अपनी अपनी जगह बनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन समस्या मन में क्या है? हु इज द सुप्रीम वन? क्यों ऐसा पूछ रहे हो? कहा कि इसे तो मुझे मालूम है कि हम लोग ट्रिनिटी मानते हैं, विष्णु भगवान पालन करते, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं, और ये भी बताते हैं कि ये तीन एक ही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सबसे बड़े हैं। आप भी जानना चाहते कि नहीं चाहते हैं? निश्चित रूप से। क्यों? हमने पूछा, पता तो था, फिर भी मैंने पूछा। कहा कि जो सबसे बड़ा होगा मैं उसी को पकड़ूंगा फिर। क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा, ठीक ना, हमारे मन की एक स्वाभाविक आप देखना प्रवणता है, जो सबसे बड़ा है उसी को पकड़ा जाए। इसी प्रकार जब गुरु करते हैं, गुरु ढूंढते हैं, महाराज जो सब जाने, सर्वसमर्थ हो, अनुग्रह करने वाला हो, उन्हीं को पकड़े। कई बार आश्रम में लोग दर्शन करने आते हैं तो आकर के ही पूछते हैं कि यहां सबसे बड़े गुरु कौन है। ठीक ना भैया, उन्हीं को प्रणाम किया जाए और जो दक्षिणा चढ़ाया जाए उन्हीं को चढ़ाया जाए, इधर उधर कहां तक हम भटके। और जब तक आप अपने इष्ट को सबसे बड़े नहीं समझेंगे तब तक कुछ कुछ खटरपटर रहेगा ही। इसलिए देखो कृष्ण भक्त से पूछो तो कृष्ण तो महाराज क्या कहना है, पूरी भागवती है। राम जी से कहो, राम भक्तों से, सबसे बड़ा कौन है इसकी झगड़ा है। और बल्कि हमारे हिंदुओं से थोड़ा बाहर जाओ तो उसमें भी बड़ी भारी झगड़ा है। कोई कहता है कि हमारा जैसासी सबसे बड़ा है, कोई कहता है कि हमारा जो खुदा है अल्लाह है वही सर्वशक्तिमान है। तो सबसे बड़ा कौन है ये एक प्रश्न है। सबसे बड़ा हम किसको समझते हैं ये आवश्यक है, इस बात को और उस चीज को हृदय में धारण करना। तो सबसे बड़ा जो है उसके सामने हमारा सर झुकता है, अर्थात उसका आश्रय हम लेना चाहते हैं, उसी को हम आत्मनिवेदन करना चाहते हैं। ये शरणागति का तत्व है। तो सबसे बड़ा कौन है जो जिससे कोई बड़ा ना हो, ऊर्ध्वमूल अवक्षाख एषो सत्थ सनातन। और तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन। एक सत्ता है सुप्रीम, ये तो निश्चित है, और किसी न किसी रूप में सभी धर्म वाले भले ही नाम रूप में झगड़ा करें, लेकिन कोई सुप्रीम, तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे, सारा विश्व चराचर उनके आश्रय से चल रहे हैं, उनकी शक्ति से चल रहे हैं, उनके संकेत से चल रहे हैं। तदुनात्येति कश्चन, उनसे उनका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता महाराज, उनका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उनका शासन चल रहा है। ये समस्त विश्व जो भी थोड़ा विचार करता है एक बड़ी व्यवस्थित शासन व्यवस्था से चल रहा है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। ये सूर्य हैं, ये चंद्रमा हैं, ये दिलोक है, ये पृथ्वी हैं, ये सब इनके प्रशासन से चल रहा है। भयादस्य अग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः, महाराज उसके डर से सब एकदम ठीक ठीक काम में लगा हुआ है। कितने भी बड़ी सत्ता हो उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो महान सत्ता है परः, उसका कोई अतिक्रमण न कर सका न कर सकेगा। और जो वहां प्रशस्ता है वो यहां पर हृदय में बैठ करके इस वैयक्तिक सत्ता का भी नियंत्रण कर रहा है। ये जो सर्वत्र एक ईश्वरीय सत्ता का प्रशासन है, उपस्थिति है, प्रेजेंस है, इसको बारंबार सुनो, विचार करो और हृदय में धारण करो, तब जाकर के अपना सर झुकेगा। महाराज, हमारा अहंकार तो ऐसा है कि ये जो है उसका बस चले तो किसी को न माने, डंडा पड़ता है तब न मानता है। तो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, कैसे शासन चल रहा है उनका? उनका शासन तो महाराज सबके भीतर रह करके अंतः तिष्ठन, भीतर रह करके यमयति, यमन करता, नियंत्रण करता भीतर से। कोई बूढ़ा आपको बाहर से नहीं बनाता है, बूढ़े आप भीतर से ही। एक स्वामी जी हमको समझा रहे थे, बहुत वृद्ध थे, वर्षों पहले, तो कुछ आंखों में लगा रहे थे, उस समय शायद उनका 90 हो रहा होगा। तो हम प्रणाम किए, कहा कि महाराज ऐसा है, देखो आपको ऐसा लगता है कि हम लोग सब बाहर से बूढ़े हुए क्या? नहीं, भीतर से सारा हमारे शरीर का एक एक कोष बूढ़ा होता है, तब हम बाहर बूढ़े दिखते हैं। हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। भीतर से हार्ट, पाचक यंत्र, सब कुछ भीतर से सब बूढ़ा हो जाता है महाराज, तो बाहर कितना भी पेंट करो क्या होगा? तो कहने का तात्पर्य ये है, सबके भीतर रह करके सबका शासन करने वाला सर्वसमर्थ वो आत्मदेवता, उनका नाम आप कुछ और रख दो, यहां तो आत्मा शब्द से छठे अध्याय में तो बता रहे हैं। जो वहां शासन है, बाहर से जो देखते हो ना ये सारा दुनिया चल रहा है, वही भीतर में आत्मा के रूप में बैठ करके इस अहंकार को, इस वैयक्तिक सत्ता को नियंत्रण कर रहे हैं। 15वें अध्याय में बड़ा प्यारा वर्णन है संक्षेप में, यदा आदित्य गतम तेजो, भगवान कह रहे हैं कि देखो मैं सूर्य बन करके प्रकाश दे रहा हूं, चंद्र बन करके, अग्नि बन करके, तुम्हारा जो प्रकाश है ना, ये क्या है, ये कहां से आया, कैसे मिल रहा है? कहा कि मैं बना हुआ हूं, और सबके अन्न बन करके मैं सबको पोषण कर रहा हूं। अब जितने प्राणी हैं उनके अनुरूप अन्न मिल रहा है, तभी तो वो जी रहा है। पुष्णामी चौषधि सर्वा। और महाराज खाली इतना नहीं है, सर्वभक्षक भी मैं हूं, सबके पेट के भीतर खाने वाला। आप ऐसा मत समझो कि आप खाते हो, अगर हमारा बस चलता है, अगर हम खाते तो रुकते थोड़े ही, खाते ही जाते, खाते ही जाते। तो कौन खाता है, विचार करो, कौन भुगता है, कौन खाता है? या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये भक्षक बन करके सब अन्नों को खा रहा है सबके भीतर। और महाराज गामा विश्व, ये सारे जो पृथ्वी से लेकर के सूर्य और पूरा यूनिवर्स जो है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड को उसने पकड़ रखा है, कितनी बड़ी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, और वही भगवान जो सारा विश्व ब्रह्मांड उठाए बैठे हैं, गोवर्धन क्या है उसके सामने? और सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, हमारा सबसे निकट का है, और उसी से ज्ञान, उसी से स्मृति, और उसी से विस्मृति, भूल जाओ तो क्या करोगे बताओ? अभी अगर ऑफ हो जाए, मान लो ये जो काम कर रहा है, क्या करें? कभी सोचा? एक स्वामी जी थे, अभी भी हैं, बहुत वृद्ध हैं, शायद 100 के आसपास होंगे, बड़े पंडित, बहुत विद्वान और बड़े अच्छे। तो एक बार हमारे आश्रम में लाया प्रवचन करने, तो उनको थोड़ा कान से भी कम सुनता है, ऐसा होता ही है, तो उनको बताना पड़ता, स्वामी जी आज ये विषय है वेदांत, चालू हो जाते हैं उनका, बस उतना कान में आना चाहिए, फिर वो तो ब्रह्म के बारे में बताना चालू किया, जन्माद्देश से जाता, 2 मिनट बोल करके ऐसे चुप हुए, अस्फुरे ही ना, अब इतने बड़े विद्वान कोई क्या कहे उनको, अब बिल्कुल ऐसे बैठ गए, माने ब्लैंक हो गया। तो अभी ब्लैंक हो जाए हमारा, क्या कर लोगे? अब कौन दे रहा है भीतर से, कौन उसको रोक रहा है? अरे महाराज, हमारी सत्ता क्या है? जिस जीव की बात कर रहा हूं, इसकी क्या सत्ता है, क्या हैसियत है इसकी? 2 मिनट हो गया, तो बगल में एक स्वामी जी थे, उन्होंने कहा महाराज पूर्ण मदम ओम 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 ओम, बस हो गया, बस इतना। तो ये जीव जो है, ये इतना घमंड किसके बल पर करता है? ये क्या है इसके पास में? जन्मने से लेकर के बूढ़े होने और मरने तक का उसको कुछ भी अधिकार नहीं है, कुछ भी क्षमता नहीं है उसका। तो उस महान शासक के सामने, महान ईश्वर के सामने सर झुकाओ, मत परहा। और उनका आश्रय जिसने लिया है, कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त, उनका नाश नहीं है। और बाकी और किसी का आश्रय लिया तो नाश तो, क्योंकि जो नाशवान सत्ता का आश्रय लोगे तो वह आपको कैसे रक्षा करेंगे? समुन्दर में जो खुद डूब रहा है वह आपको उबार सकता है? गजराज ने कितना कोशिश कर लिया, कोई उनको बचा नहीं पाए। तो भैया, एक सब के मालिक है, प्रभु हैं, उनका हुक्म चल रहा है। कई संप्रदाय हैं वो हुक्म बोलते हैं, हुक्म माने परमात्मा का दूसरा नाम है हुक्म। ऐसा आदेश, आदेश जिनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता सारे विश्व में, तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे। कहा कि जैसे ये रथ के सारे अर जो होते हैं ना, अर माने स्पोक, शलाकाएं, वो जैसे नाभि के सहारे टिका हुआ है ना, जो उसका अराइव रथ नाभो, इस प्रकार से सारा विश्व चराचर जिसके आश्रय से टिका हुआ है, वहां से थोड़ा खिसका तो बिल्कुल शून्य। तो इस प्रकार उनकी महिमा बारंबार सुनते 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 और उनका आश्रय ले, उनके शरणागत हो, ऐसे कैसे ध्यान लगेगा महाराज? जब तक आप अपने आप को समर्थ समझ रहे हो या किसी और बाहरी सत्ता के आश्रय से जी रहे हो, तो उनका आश्रय हम कहां ले पाएंगे, कहां लेते हैं? तो इसलिए मत परह, भगवान ही परम सत्ता है, माने वो जो परम सत्ता है, जो सर्वोच्च सत्ता है, उनका आश्रय लेना है। और देखो उनकी इस महान शक्ति का प्रकाश, जैसे पुष्प खिलते हैं ना वृक्ष में, अभी बाहर जाएंगे तो देखेंगे सब ये गुलमोहर जो है, पीले लाल सब खिल रहे हैं और डेली झर रहे, खिल रहे हैं, झर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये सारे प्राणी खिलते हैं और झरते हैं, खिलते हैं। ऊर्ध्वमूलम आधरशाखम, वो ऊर्ध्वमूल है और उसमें से सब खिलते हैं हम लोग भीतर से, और खिल करके जैसे ही शाम होता है ना झर जाते हैं, या सुबह झर जाते हैं, खिलते हैं और झरते हैं। क्या है ये? तो उस महान सत्ता का शरणागत बन जाओ। सप्तम अध्याय के ठीक प्रारंभ में, श्लोकार्ध में भगवान ने एक बात कही, वो इसके साथ जोड़ देता हूं तो आपको चिंतन के लिए सुविधा होगा। मैया सक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः। ये जो श्लोकार्ध है ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है। एक साथ में तीन बात मिल जाती है। मैया सक्त मनः, आसक्ति तुम्हारी मेरे में हो, मदाश्रयः और मेरे आश्रय ले लो, मेरा आश्रय लो। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जैसे कोई किसी चीज को चाहते हैं, जैसे किसी को स्वर्ग चाहिए तो वो स्वर्ग देने वाला जो यज्ञ कर्म है, जो साधन है, उसका आश्रय लेता है। ऐसे ही हम सुख चाहिए, सांसारिक सुख किसी, तो उस प्रकार के वस्तु से उसका आश्रय लेते हैं कि उससे मिलेगा। और ये योगी जो है मेरा आश्रय लेता है, मदाश्रय, जो कुछ उसको चाहिए उसको ये भरोसा है कि मुझसे सब सब मिल सकता है। और देखो ये जो मोक्ष है, ये जो ज्ञान है, ये जो वैराग्य है, ये तो नित्य मुक्त और परम विरक्त, माने भग बोलते हैं ना, समग्र वैराग्य से युक्त जो परमात्मा है, उनके बिना तो कोई मुक्ति दे ही नहीं सकता। इसलिए मुमुक्षु के लिए तो और कोई दूसरा आश्रय हो ही नहीं सकता संसार के वस्तु। जिस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से हम मुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए तो और कोई सांसारिक प्राणी का आश्रय ले ही नहीं सकते। उनके पास है ही नहीं वो चीज, स्वयं उसमें परेशान है महाराज। तो इसलिए तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, उस आदि पुरुष का ही शरण लेते हैं मुमुक्षु, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, सारे प्रवृत्तियां चल रही है महाराज। तो जिससे सब उत्पन्न होते हैं, जिससे शासन से सब चल रहे हैं, वो परम सत्ता वो मेरे भीतर भी बैठ करके शासन कर रहा है, उनका शरण ले। और शरण लेने से ही आपको एक इतनी रिलीफ मिलेगी, इतनी निश्चिंतता आएगी सचमुच। जब जिस दिन थोड़ा सा भी शरणागति का भाव आया तो बहुत शांति मिलेगी और मन अपने आप वहां पर केंद्रित हो जाएगा। तो आसक्ति, मयासक्ति, आसक्ति माने अनुरक्ति, आश्रय माने उनका शरणागति, और योग युंजन माने मन से उनका चिंतन करना है, ध्यान लगाना है। तो ये तीन चीज आ गई ना, ध्यान में आई बात। यहां पर भी वही बात हुआ, मन को एकाग्र करना, चित्त को माने आसक्ति का केंद्र भगवान को बनाना, और उनको परम समझना माने उनका आश्रय लेना, उनका चरण पकड़ करके जीना चाहिए। टैगोर ने एक बड़ी खूबसूरत प्रार्थना लिखी है बंगला में, एक चरण आपको सुनाता हूं। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে মেরা সর ঝুকা দো তুমারে চরণো কে রাজ পর ধুল পর আর মেরা সারে অহংকার মেরে আঁসু কি ধার মে বহে যায় এসা অনুগ্রহ করো অর্থাৎ মে ইতনা ঠোকর খাও কি মেরা অহংকার হমেশা কে লিয়ে মিট যায় আর মেরে তেরে চরণো কে ধুল মে মে লেট যাও ऐसे भगवान का आश्रय लेकर और उनको अपना सर्वस्व मानकर फिर मन को वहां पर लगाना है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इसमें देखो भक्ति भक्ति आ गया, ध्यान एकाग्रता आ गई और ज्ञान का भी इसमें हिस्सा आ गया। जो बाहर शासक है वही आत्मा के रूप में यहां अंदर शासक है और ज्ञान की विशेष बात तो अभी आएगी। एक श्लोक और ले लो, 25वें श्लोक, जिससे इस छठे अध्याय के योग का स्वरूप स्पष्ट हो जाए। शनैशनैरुपरमेद बुद्ध्याधृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। भगवान कह रहे हैं कि शनै शनै रूपरमेत, धीरे धीरे मन को उपरत करना, उपराम करना, अन्य चिंताओं से हटा करके ले आना। शनै शनै ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, भाष्यकार लिखते सहसा ऊपर अतिंग न कर जाते, एकदम एकाएक एकाग्र हो जाने का प्रयास भी नहीं करो, शनै शनै धीरे धीरे। कुछ चीजें धीरे धीरे अच्छी होती है। एक बार हम जब जा रहे थे अमरनाथ 2 साल पहले, तो हमारे साथ में सुगंध भी था, आपने देखा भी होगा, छोकड़ा है। तो मैं, अवधेश और सुगंध तीनों जा रहा हूं अमरनाथ, तो हम तो थोड़ा डरी रहे। एकदम शुरू में ही वहां से चढ़ाई एकदम बहुत बड़ी स्टाफ, तो सुगंध ने मन में सोचा कि ये दोनों तो बहुत पीछे ही रहेंगे, मैं तो दौड़ के चला जाऊंगा, और उसका शरीर भी ऐसा है। तो महाराज 1 घंटे के बाद उनकी जो हालत हुई, सबसे ज्यादा थका और उसको बड़े मुश्किल से हम लोग ले करके पहुंचे। हमने कहा बाबा समझ में आया शनै शनै क्यों भगवान ने कहा शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत मस्तके। भैया कंथा लेना माने सन्यासी बनना, थोड़ा सा समझ बूझ करके कंथा उठाना, इसकी भार बहुत होती है, संसार के भार से भी ज्यादा। और रास्ते में चलो, अगर लंबा चलना है आपको ना, तो दौड़ लगाने से नहीं होगा। हाँ, उस समय एक जो वो लंबी दौड़ होता है ना, बहुत चक्कर काटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैराथन, मैराथन, तो मैराथन में वो दौड़ लगाने से नहीं होगा, आपको एक एक समगति से चलने की वो होनी चाहिए, नहीं तो दो मिनट में थक जाओगे। तो ध्यान के मामले में भी भगवान कह रहे भैया योग लगाना है ना तो थोड़ा धीरज रख, शनै शनै धीरे धीरे महाराज, धीरज की बड़ी महिमा है, समझे ना। अच्छा, और इसका दूसरा तात्पर्य है भूमिका अजयक्रमेण, माने स्थूल से सूक्ष्म, उससे ये जो है ना ग्रेड्स है वो धीरे धीरे चलो, एक एक कक्षा चढ़ो, हड़बड़ मत करिए। एक सज्जन लिखते कि महाराज हमने सारा योग कर लिया। बोले क्या क्या किया? बोले कि पद्मासन में बैठ करके देखा, लेट करके देखा, खड़े होकर के देखा, आंख बंद करके देखा, आंख खोल के देखा, आंख नाक में रख करके देखा, सांस रोक के देखा, सांस चलाते हुए सब प्रकार से देख लिया। और बोलते हैं कि हिंदू बुद्ध क्रिश्चियन कोई बचा नहीं, लेकिन कुर्सी में भी हमको सफलता नहीं मिली, वो होना ही था। तो हम लोगों की कथा लगभग यही होती है, थोड़े दिन जो है इसमें लगते हैं, फिर कोई महापुरुष आते हैं, बाबा बोलते हैं कि भैया ये करो इसमें सफलता मिलेगी, अच्छा ठीक उसको करने लग जाते हैं। तो ऐसे डोलते रहते हैं, तो ऐसे इतना आसानी से किसी में भी मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज शक्तिपात है और छूने से ही हो जाएगा। शक्तिपात नाम की चीज है, कुछ फीलिंग आती है, लेकिन वो भी एक प्राथमिक चीज है, उसके भीतर से आपको बहुत लंबा रास्ता चलना पड़ेगा, चलना ही पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा जो है अपनी जो ये जर्नी है ये बड़ी सेक्रेट जर्नी है, और अपने आप को चलना है, बहुत लंबा चलना है, प्रेम से भगवान का गीत गाते जाओ, चलते जाओ, तब तो बद्रीनाथ पहुंचोगे। ये हड़बड़ हड़बड़ मत करो भैया, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ये निश्चित समझ लेना। हाँ, शनै शनैर उपरमेत। अच्छा, अब ये उपरति के एक दो प्रक्रिया हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। दो पद्धति है। अच्छा, उपरमेत कुत्र, उपरमेत कहां पर, तो वो विषय भी यहां पर बता दिया, आत्मसंस्थंग मनः कृत्वा। ये जो योग है आत्मा में मन को सम्यक स्थापित करके, न किंचिदपि चिंतयेत, और कुछ चिंतन नहीं करना है, ठीक है ना। तो आत्मा कहने से हमारे झट से ईगो की बात आ जाती है, लेकिन ये जो अहम है ये तो उस आत्मा का एक आभास है। जैसे आकाश में सूर्य भगवान है, चमक रहे, तालाब में उसकी एक छाया पड़ती है ना, इस प्रकार आत्मा की एक छाया अहम के रूप में, और ये सब अहम जो है उसी आत्मा की छाया है। ध्यान में आ रही है बात? तो इसलिए आत्मा, आत्मा में मन को स्थित करना, ये समस्त अहम का जो भाषक है, समस्त अहम की ये चमक जिससे आ रहा है उसमें लगाना है। अच्छा, तो दो इसमें पद्धति हो सकती है। एक पद्धति को योग कहा जाता है, एक पद्धति को ज्ञान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वशिष्ठ जी के शब्द मैं आपको सुनाता हूं। द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य ज्ञानम योगंच राघव, योगश्च राघव, योगो वृत्ति निरोधस्यात् ज्ञानम सम्यगवेक्षणम्। चित्त को शासन करने के लिए, नाश करने के लिए, माने समता में लाने के लिए दो क्रम है। एक का नाम भगवान वशिष्ठ ने ज्ञान रखा, एक का नाम योग रखा। योग वृत्ति निरोधश्च, योगो वृत्ति निरोधश्च। और ज्ञानम सम्यक अवेक्षणम, अच्छी तरह देखने का नाम ज्ञान है। तो जब हम ध्यान माने योग ध्यान योग का अभ्यास करें तो दो प्रक्रिया में से कोई एक प्रक्रिया हम अपना सकते हैं। एक तो हमारे मन को हम एक निश्चित विषय दे दे, ध्याय, चाहे वो भगवान की मूर्ति हो चाहे और कोई ऑब्जेक्ट दे दे, और उसमें बारंबार मन को स्थिर करे, अन्य वृत्ति आए तो उसको रोक दे। आगे भगवान कह रहे जतो जतो निश्चरति, जहां जहां वो चल करके जाएगा वहां से फिर ला करके वहां ले आओ। तो एक खास वृत्ति को बनाने में अपना प्रयास रखो, ये एक सार्वजनिक पद्धति है। अब उसमें आपके भगवान आपकी ईश्वर रूप जो भी हो सकता है, लेकिन चीज यही है कि मन को पूरी तरह और उस प्रकार से जैसे कहा हमने, रागात्मिका वृत्ति भी जोड़ो, उनको पर भी समझो, उसमें डुबो दो। वृत्ति निरोध बोलते हैं इसको, अन्य वृत्तियों को माने एक प्रकार से आप यूं कहे कि अपने मन के साथ में थोड़ी जबरदस्ती करना है। हालांकि उसकी आदत पड़ा है ना इधर उधर, एक जैसे छोटे बच्चे को अगर शासन करे बैठ जाए यहां पर, दबा करके थोड़ा बोलना पड़ता है, नहीं तो चंचल है। तो एक तो ये प्रक्रिया है महाराज, इसको योग बोलते हैं, योगो वृत्ति निरोध। दूसरी प्रक्रिया भी है, ये भी आपका सुना हुआ ही होगा, वृत्ति को निरोध मत करो। कोई भी मन के विचार को आप रोको नहीं, और न ही किसी विचार के साथ हो जाओ, उसको गति दो, जो भी आए आने दो। सम्यग अवेक्षणम, यूं समझ लीजिए, ऐसे कहा जाता है कि इसका मतलब उसको देखो, तो फिर हम देखने का प्रयास करते हैं। प्रयास यदि करते तो आप एक वृत्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, समस्त कोशिश को भीतर से ढीला कर देना है, लेकिन मन के गति को ख्याल रख रहे किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, अभी वो क्या सोचने जा रहा है, निरंतर एक अलर्टनेस कह सकते हो, एक सजगता। तो जितने आप भीतर से ढीले दे दोगे, एकदम इसको एक भक्त की दृष्टि से अगर हम वर्णन करें, हालांकि है ये ज्ञान की पक्ष, लेकिन भक्त की दृष्टि से इसको वर्णन करें तो कैसा लगेगा। देखो एक भक्त हमको बता रहे हैं अपने अनुभव कि महाराज एक दिन हम ऐसे आसन में बैठे तो ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा भाव आया कि शरीर, ये मन, ये इंद्रिय, ये सब का मालिक, सबका शासक तो परमात्मा ही है, और मैंने तो अपना कोशिश बहुत किया है मन को रुकने का, मन को लगाने का, मेरी तो उस ताकत ने देख लिया। तो आज मैं भगवान को ये जिम्मेदारी दे देता हूं कि प्रभु मुझसे तो ये सब होगा नहीं, ये तुम्हारा मन है, ये खाली देखो मुख से कहने की चीज नहीं है, ये फीलिंग है, फीलिंग है। हम लोग किसी को छोड़ते नहीं है, छोड़ना जो है बड़ा कठिन काम है, ये शरणागति। तो ये मन और इसको नियंत्रण करना है, क्या करना है, ये सब तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो सब उनको दे करके मैं बैठ गई। और मन तो अपना अब उसको जो है पूरी मस्ती मिली है, हैं, डांटने वाला फटकारने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब मन बहुत इधर उधर जाता है तो मैं भगवान को कहता हूं प्रभु देख क्या कर रहा है ये, अर्थात जो अवेयरनेस है, जैसे ही आप किसी वृत्ति के साथ हो जाते हैं ना तो ये अलर्टनेस नहीं रहेगी। तो शरणागति में भी एक सजगता है, और कहा कि मुझे आश्चर्य की अनुभूति हुई कि मन धीरे 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 अपने आप बिना प्रयास से वो शांत हो गया, और शांत होकर के वो प्रभु की सत्ता का आश्रय में आ गया। तो देखो ये जो साक्षी भाव की बात मैं कह रहा था, असल में साक्षी भाव में समस्या ये होती है कि हम बड़े उसको गलत तरीके से उसको पकड़ते हैं। एक तो साक्षी भाव बनाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि मन को हम नहीं नियंत्रण करेंगे, हमने छोड़ दिया, यही ना। अब नियंता जो भी होंगे परमात्मा या साक्षी वो देखेगा, हमको न साक्षी बनने की कोशिश करना है, बल्कि हम ये जो मैं नाम की चीज है ये क्या क्या रंग ले रहा है उसको मैं देख रहा हूं, कभी वो घबरा रहा है कभी वो आसक्त हो रहा है, ये पूरा ईमानदारी से इसको महसूस करना और सम्यक अवेक्षणम, सम्यक देखना, खाली देखना, और आप देखेंगे कि आपका चित्त इस समस्त वृत्तियों के भीतर बैठकर के जो देखने वाला है वो आपके सामने प्रकट होगा, आपके चित्त में वो सत्ता जो वास्तविक साक्षी है वो इन सारे वृत्तियों के बादलों के भीतर से चमकने लगेंगे। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, बादलों के आने जाने की गति को तो हम देखते हैं लेकिन आसमान को प्रायः आकाश को भूल जाते हैं। तो जिस आकाश में ये समस्त वृत्तियों का उठना बैठना नाचना ये सब चल रहा है, वो आकाश, वो जो इनर स्पेस है वो प्रकट होता है, लेकिन उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है महाराज। एक बड़ी विचित्र बात है कि जो ज्ञान है वो चरम शरणागति की मांग करता है, अल्टीमेट सरेंडर की मांग करता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये दो प्रक्रिया है, और साधक को भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि असाध्य कस्यचिद् योगा कस्यचिद् तत्व निश्चयः, किसी के लिए तत्व निश्चय करना माने ज्ञान पक्ष कठिन है और किसी के लिए योग कठिन पड़ता है, इसलिए इत्थम विचार्य मार्गो दो जगाद परम शिव, परम भगवान परम सत्ता भगवान ने शिवजी ने शिव माने यहां परम भगवान परमेश्वर, तो उन्होंने विचार किया और इसलिए दो मार्ग अलग अलग उपाय हमारे सामने रखा है। तो जिसको जो अच्छा लगे सरल पड़े वो कर सकते हैं, और इस प्रकार से धीरे 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 चाहे वृत्ति निरोध करके आत्मा में लगाओ या तो वृत्ति को ओपन छोड़ दो और आत्मा को अपने आप प्रकट होने दो, कोई बात नहीं आत्मा प्रकट हो जाएंगे। असल में तो अंततः परमात्मा ही प्रकट होंगे, हमारे एफर्ट से आते नहीं है। तो ये दोनों उपाय से आत्मसंस्थन मनः कृत्वा अपने में आत्मसंस्थन का अर्थ है आत्मैव सर्वम न ततो अन्यदस्ति, एक आत्मा ही और कुछ दूसरा है ही नहीं, इस अनुभव में स्थिर हो जाओ। तो ये दोनों मार्ग से आप अपने मन को साध सकते हैं। कल अंतिम प्रवचन है तो वहां एक दो बात और कहेंगे। एक तो इन सब के साथ में युक्त आहार विहार होना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आपका आहार, आपका विहार माने एंटरटेनमेंट हो या चलना हो, आपका कर्म और आपका विश्राम, युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्नावबोधस्य माने सोना जगना ना, तो ये बड़े संतुलित होना आवश्यक है अगर साधना में इसे योग में आपको ऊंचे पहुंचना है, क्योंकि इससे आपका शरीर प्राण मन संतुलित होगा तब वो लगेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान रखना। एक चीज बता करके पूरा कर देता हूं। एक बार एक प्रयोग किया गया, एक सज्जन जो टीचर थे तो उनके कोई रोग होता है ना जो पूरे धीरे धीरे मांसल सब निष्क्रिय होता है और उसका शरीर जो है काम करना बंद कर देता है। पार्किंसंस तो नहीं, जैसे नीचे से सारा आपका जो है ना पैर चलता नहीं है और धीरे धीरे ऊपर उठता है। हाँ, तो ये जो है अब जब हार्ट तक आएगा तो अब वो कैसे मृत्यु का सामना कर रहा है, उनके अनुभव उनके शिष्यों ने लिखा है। तो वो प्रयोग ये कर रहे हैं कि एक दिन हफ्ते में एक दिन सब उनके पुराने शिष्य सब एकत्र होते हैं, तो वो प्रयोग करा रहे हैं बैठे बैठे। कहा कि देखो ऐसा करो, तुम लोग सब आराम से खड़े हो जाओ गोल बना करके। बोले हाँ। अब जो है अपने आप को गिरा दो, एकदम ढीला छोड़ दो। कभी गिराने की कोशिश करना नहीं होगा है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं रुक सकता हूं, गिरूंगा तो चोट लगेगा ना। लेकिन इसी में से कोई एक आध जो है अपने आप को एकदम गिराया। अब जैसे ही वो गिर रहा है ना तो सामने वाला ऐसे उसको पकड़ता है, तो गिरता नहीं है असल में। और ये भी उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि फलाना पकड़ेगा क्या पकड़ेगा ना, लेकिन फिर भी गिरना बड़ा कठिन है। ऐसे तो हम गिरते रहते हैं लेकिन जानबूझ करके गिरना, तो शरणागति की बात हम कह रहे थे महाराज, शरणागत हम होते कहां है, हमारे अकड़ जो है ना हमेशा। अगर सर्वथा आप शरणागत हो जाए, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासत, भगवान हाथ बढ़ा करके उसको अपने गोद में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से चाहे अपने पौरुष के साथ प्रयत्न के साथ प्रयास करते हुए चलो, बहुत लोगों को एफर्ट करने में थोड़ा ठीक लगता है, और महाराज जिसको एफर्ट करते करते जो हार गया हो और ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा एफर्ट का तो इतना ही मतलब है, तो भगवान को सारा सौंप दे। और खाली वही हम देख रहे हैं असहाय की तरह, जैसे छोटा बच्चा देखता है, अब आप आओ तो ठीक है नहीं तो ऐसे ही मरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ध्यान योगेन साम,
ध्यान योगेन साम,
ध्यान योगेन साम,
ध्यान योगेन साम,
ध्यान योगेन साम।